नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये श्रृंखला आपको ज्ञान मार्ग से परिचित करवाती है। ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है और माया क्या है, बड़े सरल तरीके से समझाया गया है और सभी प्रमाण और सत्य आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। संपूर्ण श्रृंखला अद्वैत वेदांत, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन और आधुनिक विज्ञान पर आधारित है। इसमें कुछ प्रायोगिक विषय भी लिए गए हैं। यही श्रृंखला YouTube पर भी वीडियो के रूप में उपलब्ध है और यहाँ पर थोड़े फेर बदल के साथ उसको श्रोताओं के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि ये श्रृंखला सभी के लिए उपयोगी होगी। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञान मार्ग के आधारभूत सिद्धांतों के साथ। अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, ये जगत क्या है, ये जीवन क्या है, इन सभी का अर्थ क्या है और इन प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? क्या किसी किताब में मिलेंगे? जो लोग कहते हैं वो सच है या सिर्फ मैं मान लूं? जो कहा जाता है अक्सर, जो उत्तर अक्सर दिए जाते हैं, क्या उसको हम सिर्फ मान लें? इन बातों का ज्ञान और भी कई बातों का ज्ञान कैसे हो, ये संभव कैसे होगा, क्या तरीका है इसके लिए? और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आध्यात्मिक प्रश्न है, जो मूल तत्व है उसका ज्ञान कैसे हो। जो दैनिक जरूरी चीजों का ज्ञान है वो तो हम जानते हैं कैसे होता है, स्कूल कॉलेज या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से ज्ञान मिल ही जाता है, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका ज्ञान बड़ी कठिनाई से मिलता है और क्या सच है क्या गलत है वो जानना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सभी लोग अज्ञान से भरे दिखते हैं, उसी हिसाब से वो उनके कर्म होते हैं और अज्ञान से जो कर्म होते हैं उनका फल दुख, तकलीफ और कठिनाई यही सब होता है। इन प्रश्नों के उत्तर, इनका ज्ञान यदि हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ता है। ज्ञान मार्ग का अर्थ है ऐसा जीवन जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति हो, यही ज्ञान मार्ग है। छोटा मोटा ज्ञान तो सबको चाहिए रहता है लेकिन उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। सारे वस्तुओं के मूल में जाना, उनका भेद जानना, उनका रहस्य जानना, भले ही वो आपके काम का हो या ना हो, आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, व्यावहारिक हो, सिद्धांतिक हो, वो कारण नहीं है। यदि आपकी रुचि है जानने में, ज्ञान प्राप्त करने में और जिज्ञासा बहुत है, जानने की इच्छा बहुत है, तो आप ज्ञान मार्ग पर हैं, नहीं तो नहीं। सारा जीवन ज्ञान अर्जन में ही लिप्त होता है जो ज्ञान मार्ग पर होते हैं और उनको हम ज्ञानी कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जानने का सिर्फ ज्ञान मार्ग ही मार्ग नहीं है, और भी बहुत से मार्ग हैं। जैसे आप जानते होंगे योग का मार्ग है और भक्ति का मार्ग है और क्रिया का, और तो कुछ भी जानने के लिए उसका एक व्यवस्थित तरीका होता है जो कि हमारे गुरुओं ने और ऋषियों ने हजारों साल पहले विकसित किया, जो कि अब करीब करीब लुप्त होते जा रहा है। इसीलिए जिनको भी यह ज्ञान हो जाता है ज्ञान मार्ग का, वो कोशिश करते हैं कि दूसरों को पता चले ये एक कला है, ये एक जीवन शैली है जो लुप्त होते जा रही है। जो भी इस पर आता है एक बार उसको समझ में आता है ये कितना महत्वपूर्ण है, और वो दूसरों को सिखाने की, उसका प्रचार करने की, सबको बताने की कोशिश करता है, एक प्रयास करता है। कुछ भी जानने के लिए पहले जानना क्या है वो सबसे जरूरी है। कैसे जानेंगे कुछ, ज्ञान का अर्थ क्या है या ज्ञान क्या है, यहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। ज्ञान मार्ग की शुरुआत ज्ञान के अध्ययन से ही शुरू होती है। तो पहला प्रश्न यही रहेगा कि ज्ञान क्या है। मेरे हिसाब से ज्ञान का और अनुभव का सीधा संबंध है। अनुभव का जब संयोजन होता है, अनुभव का जब व्यवस्थीकरण होता है, व्यवस्थापन जब होता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी क्योंकि ये मेरी परिभाषा है। जैसी भी मेरी समझ है ज्ञान के बारे में वैसी मैंने परिभाषा बना दी है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों परिभाषा सही है। आपको दूसरी परिभाषाएं भी मिलेंगी लेकिन वो इतनी मौलिक नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं आपको नई परिभाषा देता हूँ कि जो भी हमारे अनुभव है उनका जब व्यवस्थापन होता है, उनकी जब रचनाएं बनती हैं, जब आप इसमें संबंध जोड़े जाते हैं अनुभव के, सही तरीके से बोलें तो उनका जब संयोजन होता है उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो एक रचना है ये ज्ञान, एक व्यवस्था है जो कि चित्त में होती है। अब आप कहेंगे कि वो ठीक है, लेकिन अनुभव क्या है? तो अनुभव बहुत मौलिक है, जो भी हो रहा है, जो भी अस्तित्व में है वो अनुभव है। तो तीन तरह के अनुभव हमें हो रहे हैं अभी। पहला तो जगत का है, वस्तुओं का अनुभव है जो इंद्रियों से होता है, दूसरा शरीर है, और तीसरा चित्त है। सारांश में बता देता हूँ कि चित्त एक तरह का अनुभव है, आप देख सकते हैं उसको। पहला अनुभव तो है जो इंद्रियों से हो रहा है, यानी कि जगत का अनुभव, आंखों से जो दिखाई दे रहा है, कानों से जो सुनाई दे रहा है, या जीभ से जो स्वाद है, या नाक से जो सूंघा जा रहा है, या त्वचा से जो छुआ जा रहा है, ये पंच इंद्रियों से जो बना हुआ अनुभव है वो जगत का या वस्तुओं का अनुभव है। दूसरा अनुभव शरीर का है, आधा अनुभव हमें इंद्रियों से मिल जाता है, जो शरीर हमें आईने में दिखाई देता है, जो भौतिक शरीर, और आधा शरीर जो है वो मानसिक होता है, यानी कि वो उसका हमें एहसास होता है कि वो है, उसका अनुभव आंतरिक होता है उस शरीर का। और चित्त जो है वो पूरी तरह आंतरिक अनुभव होता है, एक निजी व्यक्तिगत अनुभव होता है। तो चित्त एक तरह का अनुभव है, एक निजी व्यक्तिगत अनुभव है, जो ऐसा लगता है कि सिर में कहीं हो रहा है, जो हमारी स्मृतियां हैं, जो हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, या वासनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, दुख दर्द का ज्ञान, ये सारा जो है चित्त में हो रहा है, ये चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त चल रहा है, चलित है, दिखाई देता है ये आंखों से नहीं, लेकिन चित्त का ज्ञान चित्त से ही होता है, और ज्ञान के लिए चित्त जरूरी है, उसके बिना कोई ज्ञान नहीं होता। पहली जो मूल बात है वो ज्ञान की परिभाषा ही है। ज्ञान क्या है? अनुभवों का संयोजन, जैसे कि विभिन्न अनुभवों में संबंध जोड़ना, जैसे रूप और नाम के संबंध, जैसे आपका मित्र दिखाई देता है, तुरंत आपके मन में उसका नाम उभरता है, आप उसका नाम जान सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि मित्र का जो रूप है, जो शरीर है, उसका संबंध नाम से जुड़ा हुआ है आपके चित्त में कहीं, वो आपको याद आता है, इसका आपको स्मरण होता है। क्यों? क्योंकि उस नाम का उस रूप के साथ संबंध है। तो नाम और रूप के संबंध या बंधन है, वो एक तरह का ज्ञान है। दूसरे तरह का संबंध जो बनता है चित्त में, वो है क्रिया और कर्ता का संबंध, यानी कोई क्रिया है, उसका जो कर्ता है, उसका जो कारण है, उन दोनों के बीच एक संबंध आपको मिलता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आज खाना किसने बनाया, तो आपके चित्त में एक रूप या एक नाम उभरेगा कि मेरी माँ ने बनाया है, या मेरी बीवी ने बनाया है, या ये होटल में किसी ने बनाया है, किसने किया है वो, ये संबंध। तीसरा है कारण और प्रभाव का संबंध। हर अनुभव का चित्त कोई कारण ढूंढता है, और उसमें उन दोनों के बीच में संबंध बनाता है, कारण और प्रभाव के बीच में संबंध। चौथा संबंध है विषय और वस्तु का संबंध। एक और संबंध हो सकता है वर्गीकरण, जैसे आपको कोई जानवर दिखाई देता है, जैसे चार पैर है, एक पूंछ है, दो सींग है, तो वो एक तरह का वर्ग में आता है, जिसको हम जानवर कहेंगे या जीवित वस्तु कहेंगे। तो ऐसे वर्गीकरण है हमारे, हजारों तरह के हैं, हमने हर चीज को बांट रखा है वर्गों में, वो संबंध भी चित्त ही बनाता है, वो भी एक तरह का ज्ञान ही है। एक और तरह का ज्ञान है सार ग्रहण, यानी चीजों का सार क्या है, इसका चित्त निर्माण करता है। जब उसको अनुभव आते हैं तो उसका सार जो है वो निकालता है, और ये एक तरह का ज्ञान बन जाता है। जैसे आप कहेंगे न्याय व्यवस्था क्या है, भारत की न्याय व्यवस्था क्या है, यदि ये प्रश्न पूछा जाए, तो इसमें जो शब्द है न्याय व्यवस्था, ये एक पूरी जो व्यवस्था है न्याय की, उसका सार है। जैसे ही आप न्याय व्यवस्था कहते हैं, ज्ञान को इंगित करता है कि उसके नीचे काफी परतों में सारा न्याय का ज्ञान छुपा हुआ है। और भी कई तरह के व्यवस्थाएं हो सकती है, जैसे अवधारणा, किसी चीज की अवधारणा, मान्यता, जैसे गुरुत्व, हर चीज जो आप फेंकते हैं हवा में वो पृथ्वी पर वापस आती है, वापस गिरती है, या पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, इसके पीछे एक ज्ञान है, एक अनुभव है, जिसकी अवधारणा हमने बना दी है, और हम उसको गुरुत्व कहते हैं। ये एक तरह की अवधारणा है, एक मान्यता है, जो कि उस अनुभव को दर्शाती है, उसकी व्याख्या करती है, उसका कारण बताती है, जो अनुभव है। उसके बाद एक और तरह का ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं विवेक, सही या गलत, सच या झूठ, सत्य असत्य, ये जानना एक तरह का व्यवस्थापन करना है, क्या चीज सही है, क्या चीज अनुभव के हिसाब से है, क्या चीज अनुभव में नहीं है, इसको कहते हैं विवेक। क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, ये जानने की कला, ये जानने की योग्यता विवेक होता है। इसके बाद और भी कई तरह की व्यवस्था हो सकती है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, वो है अनुक्रम, यानी कि एक अनुभव को दूसरे के नीचे व्यवस्थित करना। अनुक्रम मतलब जैसे आप किसी सरकारी ऑफिस में जाएंगे, सरकारी दफ्तर में, तो सबसे ऊपर जो है अधिकारी होता है, उसके नीचे क्लर्क होते हैं, उसके नीचे छोटे अधिकारी होते हैं, फिर चपरासी होते हैं, ऐसे अलग अलग इनके पद होते हैं लोगों के। किसी भी आप कंपनी में या दफ्तर में जाएंगे तो ये है अनुक्रम, एक के नीचे दूसरा पद होगा, ऐसी एक व्यवस्था होगी, और हर पद पर, हर परत पर एक विशेष तरह का कार्य आपको दिखेगा। ये एक तरह की संरचना है, एक तरह की व्यवस्था है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ज्ञान क्या है। अनुभवों का संयोजन ज्ञान है, व्यवस्थापन ज्ञान है। व्यवस्थापन से क्या मतलब है, विभिन्न अनुभवों में संबंध बनाना। किस तरह के संबंध, नाम रूप के संबंध, क्रियाकर्ता के संबंध, कारण प्रभाव, विषय वस्तु, वर्गीकरण, सार ग्रहण, अवधारणा, मान्यता, विवेक और अनुक्रम। ये मैंने कुछ ढूंढ के निकाले हैं संबंध, और भी हो सकते हैं, काफी हो सकते हैं। तो आपको मैं एक तरह का होमवर्क देता हूँ कि ज्ञान के अंदर जो विभिन्न संबंध हैं वो ढूंढ के उनकी लिस्ट बनाएं। आपको काफी उससे सहायता मिलेगी समझने में कि ज्ञान को क्यों नियोजन या संयोजन क्यों कहा गया है, क्यों यह परिभाषा हम उपयोग करने वाले हैं। आप दूसरी पुस्तकों में देखेंगे तो आपको कई परिभाषाएं मिलेंगी। ज्ञान दर्शन एक तरह का दर्शन है, आपको उसमें तरह तरह की परिभाषाएं मिलेंगी। जो गुरु हैं, गुरुजन हैं या ऋषि हैं, जो इनके मास्टर हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं बना ली हैं। तो मैंने उनको पढ़ा, समझा और मुझे ये परिभाषा सबसे पसंद आई, क्योंकि ये हमारे एक मौलिक अनुभव पर आधारित है, ये कोई अवधारणा पर नहीं है, ये मतलब ठोस धरातल पर आधारित है ज्ञान की परिभाषा। कि ज्ञान अनुभव से आता है और अनुभव का व्यवस्थापन जब चित्त में होता है उसको हम ज्ञान कहते हैं। एक तरह की रचना है जो चित्त में बनती है, फिर से एक अनुभव है। हम आप ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, तीन तरह के मैंने आपको अनुभव बताए, जगत का, शरीर का, चित्त का। मैं आपको सिर्फ तीन ही अनुभव बताऊंगा, क्योंकि जो स्वयं का अनुभव है वो थोड़ा विशेष अनुभव है, उसमें इतना आसान नहीं है वो समझना है। उसका ज्ञान जो है, स्व का ज्ञान दूसरे तरह का ज्ञान है, वो चित्त में नहीं होता है। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं ज्ञान क्या है। तो अगला प्रश्न आता है कि ठीक है ये संयोजित होता है, लेकिन कहाँ संयोजित होता है। तो उत्तर इसका मैं दे चुका हूँ पहले ही, ये चित्त में होता है। चित्त एक तरह का अनुभव है, आप ज्ञान का भी अनुभव कर सकते हैं। जो ये व्यवस्थापन, जो रचना बनी है, चित्त में बनती है। इसको हम नाम देते हैं संस्कार। जब अनुभव होते हैं तो वह चित्त पर एक छाप छोड़ते हैं, इस छाप को हम संस्कार कहते हैं। जैसे आप गीली मिट्टी पर चले तो आपके पैरों की छाप गीली मिट्टी पर छूट जाती है, बन जाती है। कोई भी अनुभव जब चित्त के संपर्क में आता है तो एक छाप छोड़ता है चित्त पे, इसे हम स्मृति भी कहते हैं। लेकिन स्मृति इतना सही शब्द नहीं है, जो सही शब्द है वो है संस्कार। तो अनुभव चित्त पर संस्कार छोड़ते हैं, छाप छोड़ते हैं। जब ये संस्कार संयोजित होते हैं, नियोजित होते हैं, इनका व्यवस्थापन होता है, चित्त में एक प्रक्रिया है जो ये व्यवस्थापन करती है। ज्ञान अर्जन या ज्ञान का संयोजन एक प्रक्रिया है जो चित्त में चल रही है। अनुभव आते जाते हैं, उनका अपने आप संयोजन होता जाता है, ये संबंध अपने आप बनते जाते हैं, ये एक चित्त वृत्ति है। मेरे हिसाब से चित्त की भरी परिभाषा है पराभौतिक और परामानसिक रचनाएं। इसके बारे में बहुत गहरा विश्लेषण होने वाला है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला है तो घबराने की बात नहीं है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन मैं दूंगा आपको। चित्त बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसको समझना। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि ये आपका मानसिक अनुभव है, आपका व्यक्तिगत अनुभव है। चित्त तीन में से तीन तरह के अनुभव में से ये तीसरा है। आप कहेंगे कि ये अनुभव है किस चीज का, तो ये जानना थोड़ा कठिन है। अभी मैं आपको सिर्फ शब्द दे देता हूँ इसके, कि ये पराभौतिक और परामानसिक रचनाएं हैं चित्त। तो पराभौतिक का अर्थ होगा जो भौतिक के बाहर है, जो भौतिक के ऊपर है। जहां भी परा ये शब्द आ जाता है आगे, इसका मतलब है उसके ऊपर। सो ये भौतिक रचनाएं नहीं है, आपको चित्त दिखाई नहीं देगा आंखों से, सुनाई नहीं देगा। कोई भी आप मशीन लगा लें या कोई भी यंत्र लगा लें, उसमें आपको दिखाई नहीं देगा ये, क्योंकि विशेष तरह का अनुभव है। कोई भी उपकरण, साधन, यंत्र, उससे चित्त आपको दिखाई नहीं देता, इसीलिए पराभौतिक कहा गया है। परामानसिक ये आपको जो रचनाएं हैं वो सिर्फ वृत्ति के रूप में दिखाई देती हैं। आंतरिक इंद्रियां हैं, अंतकरण है जो, वो आपको सिर्फ वृत्तियां दिखाई बताएगा। आपको वो वृत्तियां कहाँ से उठ रही हैं वो आपको कभी नहीं दिखाई देंगी। तो इसीलिए परामानसिक, ये मानसिक भी नहीं है चित्त, लेकिन हम जानते हैं कि ये रचनाएं हैं क्योंकि उनके प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग उसको ऊर्जा भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसको शक्ति भी कह सकते हैं। तो जो चित्त चलित है तो आपको उसके प्रभाव दिखाई देंगे, लेकिन वो क्या है, वो रचनाएं क्या है, संस्कार आप देखने जाएंगे तो आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, पराभौतिक है, मानसिक भी नहीं है, परामानसिक है, उसका दर्शन नहीं हो सकता। मान लीजिए ये सिद्धांतिक है, ये सिद्धांतिक परिभाषा है। जो मूल तत्व है वो समझना काफी महत्वपूर्ण है। अगर वो समझ में नहीं आया तो अगला मैं जो भी कहने वाला हूँ वो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, वो सब सिर्फ आपके समय नष्ट करना है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ। जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं, जब आप PhD करते हैं, या कुछ भी, आप कितने भी बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताया जाएगा कि ज्ञान क्या है क्योंकि ज्ञान दर्शन का विषय है। जब तक आप दर्शन शास्त्र नहीं लेते हैं कॉलेज में या महाविद्यालय या आपके यूनिवर्सिटी में, तब तक आप इस प्रश्न के संपर्क में भी नहीं आएंगे। आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि ज्ञान क्या है। सबने कुछ मान लिया है, हाँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, लेकिन जानना क्या है, मालूम करना क्या है, कैसे कोई चीज़ मालूम होती है, ये लोगों में इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो आम जीवन में काम नहीं पड़ता है इसका। आम जीवन चल रहा है अपने आप, विस्तार में आपको जाने की, इतना गहरे जाने की आम जीवन में कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए चलता जाता है, इसलिए किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े मूल तत्व पर जाते हैं कि मेरा जीवन क्या है, इसका अर्थ क्या है, या मैं क्या हूँ, या ये सारा जगत क्या है, ये इन प्रश्नों के उत्तर यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि ज्ञान क्या है। तो अगला प्रश्न है कि ज्ञान का सृजन कौन करता है, ये सब कौन कर रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, चित्त खुद ही कर रहा है। ये चित्त की एक वृत्ति है। वृत्ति का मतलब प्रक्रिया। वृत्ति शब्द बार 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 आएगा, मैं हर बार मतलब उसको कम से कम 100 बार तो बोलने ही वाला हूँ। वृत्ति वृत्ति तो आपको समझना जरूरी है कि वृत्ति क्या होती है। वृत्ति शब्द वृत्त से निकला है। वृत्त का मतलब है घेरा, गोल, सर्कल। वृत्ति मतलब घेरे में चलना। जब कोई क्रिया बार 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 चलती है एक घेरे में, उसको हम प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो जो चित्त वृत्ति है, चित्त में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जो कि अपने आप को दोहराती हैं, एक वृत्त के रूप में चलती हैं। वो जब समाप्त हो जाती है तो फिर से चालू होती है। जैसे दिन और रात, ये एक वृत्ति है। जब दिन खत्म होता है रात शुरू होती है, रात खत्म होती है दिन निकलता है, दिन और रात दोहराना, उसकी आवृत्ति करना। तो चित्त में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो दोहराती रहती हैं, पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है, उनको वृत्तियां कहते हैं। शरीर में भी ये प्रक्रियाएं हैं, जैसे सांस लेना या हृदय गति हमेशा धड़कता रहता है, एक वृत्त में चलता रहता है, सांस भी चलती रहती है एक वृत्त में। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, जब वो दोहराती हैं हम उनको वृत्ति कहते हैं। तो ज्ञान का सृजन एक तरह की वृत्ति है, ये चल रही है, संबंध बनाना अनुभव में अपने आप होता रहता है। अगर कोई कहे कि मैं जान रहा हूँ या मैं ये ज्ञान ले रहा हूँ, तो ये कहना गलत होगा, वो अपने आप हो रहा है। यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं, यदि आप का कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको ज्ञान मिले, तो भी सिर्फ क्योंकि आप जीवित हैं, सिर्फ क्योंकि अनुभव हो रहे हैं, वो ज्ञान जो है अपने आप जमा होता जा रहा है, ज्ञान संग्रह होता जा रहा है आपके चित्त में। इसको टाल नहीं सकते, इसको आप रोक नहीं सकते। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि जो आपने किसी बड़ी किताब में लिखी हुई कोई बड़ी चीज़ जान ली है, या कोई आप समझ लीजिए डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या वैज्ञानिक है, आपने कोई गूढ़ बात जान ली है, ये ज्ञान नहीं है। अनुभव आपके चित्त के पटल पर उभरते रहते हैं और उनके आपस में संबंध बनते रहते हैं, और वो ज्ञान जमा होता जाता है, ज्ञान संग्रह होता जाता है। तो सिर्फ क्योंकि आप जीवित है आपको ज्ञान मिल रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप चलती है, इसको कोई करता नहीं है। तो लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है कि ज्ञान कॉलेज में मिलेगा या कुछ करने से मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन वो विशेष ज्ञान होगा जिसके पीछे लगकर आपने वो अनुभव लिए हैं, जिसके वजह से आपके चित्त में वो संस्कार बन गए हैं। जैसे किसी कला का ज्ञान, गाना या संगीत, चित्रकारी या कुछ भी, इसके लिए आपको वो अनुभव लेने पड़ते हैं, वो अनुभव संस्कारों में बदलते हैं, तब आप कह सकते हैं कि वो ज्ञान मुझे, उस कला का ज्ञान हो गया है, मैं कलाकार हो गया हूँ। तो तरह तरह के ज्ञान होते हैं। लोगों की भ्रांति है कि सिर्फ कुछ तरह के अनुभव ही ज्ञान है, बाकी ज्ञान नहीं है, वो बात सच नहीं है। जैसे ही एक व्यक्ति जन्म लेता है ज्ञान संग्रह शुरू हो जाता है। पहला उसको अपनी माँ का ज्ञान होता है कि मेरी माँ कौन है, कौन मेरा ख्याल रखता है, मेरे पिता कौन है। फिर चलने का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, कपड़े पहनने का ज्ञान, नहाने धोने का ज्ञान, खाना खाने का ज्ञान, चम्मच कैसे पकड़ना है, और ये सारी जो अनुभव हैं ये ज्ञान में बदलते रहते हैं। ज्ञान कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। जब तक ये जीवन है तब तक ज्ञान की प्रक्रिया, वृत्ति चलती रहती है। तो सबसे मूर्ख आदमी भी ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है, लिप्त है, रोक नहीं सकता। हाँ, उसके मन में क्या संबंध बन रहे हैं, क्या चित्त पर संस्कार बन रहे हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा उल्टा सीधा हो, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो, इसीलिए हम उसको मूर्ख कहते हैं, लेकिन वो भी ज्ञान है। एक बुद्धिमान आदमी के लिए ज्ञान लेना बहुत आसान रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत तेज है। उसको एक बार आप दिखा दो कुछ, एक अनुभव में ही उसको सारा ज्ञान हो जाता है। तो तरह तरह के लोग हैं, क्योंकि तरह तरह के चित्त हैं, तरह तरह के अनुभव हैं, इसलिए तरह तरह के ज्ञान हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती है, 10-12 किताबें ऐसे ही लिखी जा सकती हैं, हजारों पन्ने भरे जा सकते हैं कि ज्ञान क्या है। तो आज की जो हमारी सभा है इसमें मैं आपको सिर्फ सारांश ही दे सकता हूँ। यदि आपकी रुचि है तो और आगे आप पढ़ सकते हैं या किसी और गुरु से विस्तार से ज्ञान ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा ताकि मूल तत्व का ज्ञान आपको आसानी से मिल जाए। तो अगला प्रश्न है कि ज्ञान क्यों आवश्यक है। आप मना नहीं कर सकते कि नहीं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, ये हो नहीं सकता है। जैसे सांस चल रही है, हृदय गति चल रही है, उस हिसाब से है ये, आप इसको रोक नहीं सकते। सांस से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। छोटे बच्चे को उस ज्ञान नहीं होगा कि उसकी माँ कौन है और खाना कैसे खाना है और चलना कैसे है, तो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। आप सोचें अगर इस बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए क्या है, तो सबसे पहले नंबर पर ज्ञान आएगा। उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर में होने वाली क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस देश में हैं, कि आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, वो सब कुछ महत्व नहीं है यदि ज्ञान नहीं है। इसी पर हर चीज चल रही है, ज्ञान पर ही सारा संसार टिका है। सबसे पहले ज्ञान आता है, तो ज्ञान का यही महत्व है। अगर आप कहेंगे नहीं, बिना ज्ञान के भी मैं आराम से जी सकता हूँ, तो इसका मतलब आपको ज्ञान का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ज्ञान क्या है आपको अच्छे से मालूम नहीं है। आप समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, या महाविद्यालय, या आपके बड़े लोग जो जानते हैं, ज्ञानी लोग जानते हैं, वो ज्ञान है। नहीं, ज्ञान बहुत मूलभूत है, इतना ही मूलभूत है जितना कि अनुभव। अनुभव और ज्ञान एक ही है, करीब करीब एक ही है, बस इतना फर्क है ज्ञान में और अनुभव में कि अनुभव शुद्ध होता है, ज्ञान उसका संस्करण होता है। उसका जब विभिन्न अनुभवों में संबंध बना दिए जाते हैं, वो अनुभव ज्ञान कहलाता है। अब आप समझ सकते हैं कि अनुभव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिना अनुभव के लिए, अनुभव के कुछ है क्या? जो भी है अस्तित्व में वो अनुभव ही है। अनुभव से संस्कार बनते हैं और संस्कार से ज्ञान मिलता है, ज्ञान बनता है, ज्ञान से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वो ज्ञान से के धरातल से ही आते हैं। हम जो जानते हैं वही सोचते हैं, है ना। जो आप नहीं जानते उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो हमारे विचार हैं, जो मन में वृत्तियां हैं, उसी से हमारी वाणी बनती है, उस वाणी की रचना होती है, वाणी से कर्म होते हैं। वाणी भी एक तरह का कर्म है, लेकिन हम उनमें भेद करते हैं। जो हाथ पैरों से कर्म होते हैं हम उनको कर्म कहते हैं, हाथ पैरों की जो क्रियाएं हैं, और जो मुंह से होता है वचन, उनको हम वाणी कहते हैं। किसी के लिए भी बहुत आसान होगा ये समझना कि हमारे कर्म ही नींव है, हमारा जीवन हमारे कर्मों पर ही आधारित है। हमारी जो वाणी है और जो हमारे कर्म है ये मुख्य आधार है हमारे जीवन का। यदि वही गलत होंगे तो जीवन कैसा होगा? परेशानी से भरा होगा, दुख से भरा होगा, कुछ भी सही नहीं हो रहा होगा उसमें। कुछ लोग कहते हैं कि वाणी से क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ भी बोलूं, आप कोशिश करके देख सकते हैं। आपकी वाणी अगर सत्य से निकल रही है, ज्ञान से निकल रही है, आपके अनुभव से निकल रही है, तो उसका प्रभाव कुछ और ही होगा। यदि वो मूर्खतापूर्ण वाणी है आपकी, जिसके पीछे कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, उसका कुछ और ही प्रभाव होगा। ये समझना बहुत आसान है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। थोड़ा खतरा है लेकिन देख सकते हैं प्रयोग करके। हाथ पैरों से जो होता है उनका प्रभाव आपको मालूम ही है, पता है आपको, उसका ज्ञान है आपको कि सारा जीवन हमारे कर्मों पर ही आधारित है। हमारे जो संबंध है लोगों के साथ, माता पिता या परिवार जनों के साथ या मित्रों के साथ या आपके कार्यालय या आपके अधिकारियों के साथ जिनके नीचे आप काम कर रहे हैं, या आपके ऊपर जो लोग शासन कर रहे हैं, आपकी सरकार या जो भी है, ये सारे संबंध जो है वाणी पर आधारित है, आपके वचनों पर आधारित है। अगर आप मीठा बोलते हैं, अगर आप प्रेम दिखाते हैं वाणी से, तो संबंध है, नहीं तो वो संबंध खराब हो जाते हैं, वो संबंध शत्रुता में बदल जाते हैं। वाणी को आप छोटा मोटा ना समझें, सब बहुत बड़ी चीज़ है मनुष्य के लिए। जानवरों के लिए हो सकता है उनके कर्म ही आधार हों, लेकिन मनुष्य के लिए वाणी सबसे बड़ा कर्म है। इसको लोग बड़ा हल्के तरीके से लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं जो मन में आता है, और इसीलिए उनका जीवन ऐसा जंजाल है। इसीलिए उनका जीवन दुख से भरा है, या उनको या दिशाहीन है, मतलब भटके हुए हैं लोग। वाणी को साधा नहीं है उन्होंने, और उसका कारण है अज्ञान, ज्ञान का अभाव। विचार जो चल रहे हैं मन में वो ज्ञान से ही निकलते हैं, उनका सृजन जो है ज्ञान से ही होता है। ज्ञान नहीं है तो उस तरह के विचार आएंगे, जिस तरह के विचार आएंगे उस तरह की वाणी, उस तरह के कर्म होंगे। तो आप देखिए, आपके जीवन का आधार ज्ञान है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ज्ञान का अध्ययन ज्ञान मार्ग है, और इसीलिए ज्ञान मार्ग से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है एक मनुष्य के लिए। सर्वोपरि है ज्ञान मार्ग। जितने भी मार्ग हैं वो आपको ज्ञान के तरफ ही ले जाते हैं, ज्ञान की तैयारी ही करवाते हैं, और किसी मार्ग का और कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए ज्ञान मार्ग को सीधा मार्ग कहा गया है। ज्ञान से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, सारे मार्ग आपको ज्ञान की तरफ ही ले जाते। गुरु देखता है कि सीधा ज्ञान नहीं मिल सकता इस व्यक्ति को, तो आपको दूसरे मार्ग दिए जाते हैं। पहले चित्त शांत कर लो, एक जगह बैठना सीख लो, आपकी वाणी सही कर लो, आपके कर्म सही कर लो, तो उसका उल्टा भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर ज्ञान से कर्म प्रभावित हो रहे हैं तो कर्म से ज्ञान प्रभावित होता है, ये मतलब दोनों तरह से इसका प्रभाव मिलता है। उस विषय में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो और भी बड़ा विषय है ज्ञानार्जन। लेकिन अभी इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था कि ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इस पर आप विचार कर सकते हैं, थोड़ा जरा मनन करके देखिए इस बात पे कि क्यों ये आधार है जीवन की। जो गुणवत्ता है उसका आधार ज्ञान है। और हमें क्या चाहिए? सुख से भरा जीवन चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है, और वो पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित है। अगर आप सैद्धांतिक ज्ञान कहेंगे तो वो सिद्धांत का ज्ञान हो गया, वो अनुभव के आधार पर नहीं है, वो सिद्धांत का ज्ञान है, वो जो सिद्धांत जिस बारे में कह रहा है उसका ज्ञान नहीं है। तो क्योंकि जो समाज में जो लोग हैं उनको ये बातें नहीं बताई जाती, न स्कूल में बताई जाती है, न कॉलेज में बताई जाती है, कहीं नहीं बताई जाती। आप सबसे बड़ा ज्ञानी ढूंढ ले आपके शहर का, उसको भी नहीं मालूम होगा कि ज्ञान क्या है। सिर्फ आध्यात्मिक जो मार्ग पर हैं लोग, या ज्ञान मार्ग पर हैं, या जो ज्ञान दर्शन का अध्ययन करते हैं, उन्हीं लोगों को मालूम है, जो कि 1% से भी कम है, 1000 में 1 जो है, जिनको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि क्या चीज ज्ञान है, क्या चीज सिद्धांत है, क्या चीज सिर्फ जानकारी है जो किताबों में लिखी है, इन्फॉर्मेशन आपके अनुभव से आपको मिली है। इनमें लोग भेद नहीं कर पाते, उनको मालूम नहीं चलता। किसी ने कुछ बोल दिया कि हाँ ये सच है, मान लेते हैं। और ये अवधारणाएं हैं, ये मान्यताएं हैं। लगता है कि ज्ञान है, मुझे हर चीज मालूम है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था मैंने ये परिभाषा क्यों चुनी, क्योंकि आपको परिभाषा से ही पता चल जाता है कि ज्ञान क्या है, क्या चीज है। तो परिभाषा अनुभव का संयोजन या व्यवस्थापन, ये ज्ञान में बता रहा हूँ कि ये परिभाषा है मेरी। तो आप परिभाषा से ही समझ सकते हैं कि अनुभव पहला है, अनुभव का जब संयोजन होता है वो ज्ञान है, अनुभव नहीं ज्ञान भी नहीं। तो हाँ, ये बातें आम जनता को नहीं पता है, उनके लिए ज्ञान और अज्ञान एक ही चीज़ है, और इसीलिए उनके जो वचन है और उनके जो कर्म है वो इस तरह के हैं। उनमें कुछ भी दिशा नहीं है, उनमें कुछ भी समझदारी दिखाई नहीं देती, कुछ भी बुद्धिमानी नहीं दिखाई देती। तो यही फर्क है एक शिष्य में जो कि आध्यात्म के मार्ग पर है, और एक आम आदमी में कि जो आध्यात्म में है या ज्ञान मार्ग पर है उसको बड़ा स्पष्ट रहता है कि इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। इसीलिए हमने ये जो श्रृंखला शुरू की है ये ज्ञान के ज्ञान से शुरू की है कि ज्ञान क्या है पहले जान लो। ज्ञान लेने से पहले मैं आपको पूरा विस्तार से और आगे बताऊंगा कि इसका इसका ज्ञान का तरीका क्या है, और जो सिद्धांत या जो किताबी नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, उसको अज्ञान माना गया है, उसको ज्ञान नहीं माना गया।
आप सुन रहे थे बोधिवार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।